एक्स पोस्ट फैक्टो शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो शोध अप्रयोगात्मक शोध का एक प्रकार है। इसे नैमित्तिक तुलनात्मक शोध भी कहा जाता है, या जब सहसंबंधात्मक विश्लेषण का यहाँ उपयोग किया जाता है तो इसे सहसंबंधात्मक शोध को रिलेशनल रिसर्च भी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। एक्स पोस्ट फैक्टो शोध से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता इन्वेस्टिगेटर किसी प्रभाव इफेक्ट के आधार पर उसके संभावित कारणों कॉजेस का पता लगाने की कोशिश करता है। सचमुच में इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध का प्रारंभ करता है। प्रभाव आश्रित चर होता है तथा पहले बीत चुकी घटनाएं जिन्हें कारण कहा जाता है स्वतंत्र चर होते हैं। इस तरह से एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति आश्रित चर के सामने आने के बहुत पहले ही हो चुकी होती है। यही कारण है कि इस शोध के में शोधकर्ता चाहकर भी स्वतंत्र चर में किसी प्रकार का कोई जोड़ तोड़ नहीं कर सकता। इस तरह से एक्स पोस्ट फैक्टो शोध का मुख्य उद्देश्य इस मौलिक प्रश्न का उत्तर देना होता है, कोई विशेष घटना परिणाम अवस्था या अन्य प्रकार के व्यवहार के साथ कौन कौन से कारक संबंधित होते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो शोध को इस ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, एक्स अंडर डबल इनवर्टेड कॉमा एक्स पोस्ट फैक्टो शोध एक ऐसा आनुभाविक शोध एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें शोधकर्ता चरों के बीच के संबंध के बारे में ऐसे स्वतंत्र चरों के आधार पर अनुमान लगाता है जिसकी अभिव्यक्ति पहले हो चुकी होती है। इस तरह के शोध में अनुसंधानकर्ता को स्वतंत्र चरों की अभिव्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है क्योंकि वे प्रभाव दिखाने के बहुत पहले घटित हो चुके होते हैं। यदि हम इस परिभाषा का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं तो हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। 1. एक्स पोस्ट फैक्टो शोध एक आनुभाविक शोध है, अतः यह एक प्रकार का वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च होता है। पैराग्राफ चेंज। 2. इस तरह के शोध में स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति शोध आरंभ होने के बहुत पहले ही हो चुकी होती है। 3. इस तरह के शोध में चूंकि स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति बहुत पहले ही हो चुकी होती है अतः उसके जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन पर शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। 4. इस तरह के शोध में शोधकर्ता किसी व्यवहार या घटना के प्रभाव इफेक्ट के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाता है, अतः प्रभाव के आधार पर कारण का अध्ययन की यह रीति अन्य शोधों की रीति से विपरीत होता है जिनमें सामान्यतः कारण के आधार पर प्रभाव के बारे में अनुमान लगाया जाता है। पैराग्राफ चेंज। एक उदाहरण एक्स पोस्ट फैक्टो शोध की व्याख्या एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता फेफड़े के कैंसर का अध्ययन करना चाहता है, वह ऐसे रोगियों का प्रेक्षण करके इस आधार पर पहुंचता है कि धूम्रपान सिगरेट स्मोकिंग तथा चरिकालिक खांसी क्रॉनिक कफ इससे संबंधित दिखते हैं। अतः वह ऐसे रोगियों में इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि उनमें धूम्रपान की आदत किस तरह की है, प्रतिदिन कितनी संख्या में वह सिगरेट पीता है आदि आदि। उसी तरह से यह भी वह पता लगाया कि रोगी में खांसी यदि है तो उसका स्वरूप किस तरह का है, कितने दिनों से उसे खांसी है तथा उसका खांसी सामान्य खांसी से किस तरह से भिन्न है। यदि शोधकर्ता इस तथ्य पर पहुंचता है कि जिन रोगियों में फेफड़े का कैंसर घातक एवं तीव्र है उनमें श्रृंखलाकार धूम्रपान चेन स्मोकिंग को बुरी आदत रही है तथा उनका खांसी कई वर्षों से काफ़ी भयावह रूप में रहा है, तो उसका अंतिम निष्कर्ष यह हो सकता है कि फेफड़े का कैंसर का कारण धूम्रपान तथा चिरकालिक खांसी क्रॉनिक कफ होता है। पैराग्राफ चेंज। एक्स पोस्ट फैक्टो शोध के कुछ लाभ एडवांटेजेस तथा परिसीमा लिमिटेशंस हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक एक्स पोस्ट फैक्टो शोध को व्यवहारात्मक शोधों में अधिक अहमियत प्राप्त है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां चरों में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन करना संभव नहीं हो पाता है। कई समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजिकल चर तथा शैक्षणिक एजुकेशनल चर इस श्रेणी के हैं जिनमें जोड़ तोड़ करना संभव नहीं है, फिर भी उन्हें अध्ययन करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में एक्स पोस्ट फैक्टो शोध के अलावा कोई उचित विकल्प नहीं रह जाता है। पैराग्राफ चेंज दो, कुछ विशेष परिस्थिति में जहां शोधकर्ता को किसी व्यवहार या घटना के प्रभाव इफेक्ट्स के आधार पर उनके कारणों का पता किया जाना ही मात्र विकल्प होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो शोध की ही एक प्रमुख लाभदायक शोध सिद्ध होता है। ऐसी परिस्थिति में अन्य दूसरे का शोध का संचालन नहीं किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज तीन, एक्स पोस्ट फैक्टो शोध का संचालन सरल होता है क्योंकि यह शोधकर्ता को स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई जोड़ तोड़ करना संभव नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज इन लाभों के बावजूद एक्स पोस्ट फैक्टो संभव नहीं होता इन लाभों के बावजूद एक्स पोस्ट फैक्टो शोध बहुत लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ परिसीमाएं हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं। पैराग्राफ चेंज एक, एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में चूंकि शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ नहीं कर पाता है, इसलिए स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के प्रस्तावित संबंध के बारे में यथार्थ ढंग से किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान लगाना एक कठिन कार्य हो जाता है। पैराग्राफ चेंज दो, एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर पर नियंत्रण यदि यादृच्छिकरण रैंडमाइजेशन के द्वारा करना चाहे तो वह नहीं कर सकता है। इससे शोध के परिणाम पर निर्भरता स्वभावतः कम हो जाती है। पैराग्राफ चेंज तीन, इस तरह के शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच के संबंध की उचित व्याख्या नहीं कर पाता है और वह प्रायः पोस्ट है हॉक दोष पोस्ट हॉक फैलेसी का शिकार हो जाता है, जिसमें शोधकर्ता दो कारक में से एक को कारण और दूसरे को प्रभाव सिर्फ इसलिए मान लेता है क्योंकि दोनों हमेशा साथ साथ होते पाए जाते हैं। चूंकि धूम्रपान तथा कैंसर में प्रायः एक निकट संबंध होता है, इसलिए शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि धूम्रपान कारण है जबकि कैंसर उसका प्रभाव है। हालांकि यह हो सकता है कि इस तरह के व्यक्ति में कैंसर का कारण ग्रंथीय असंतुलन ग्लैंडुलर इम्बैलेंस या कोई अन्य कारण हो। पैराग्राफ चेंज इन परिसीमाओं के बावजूद विशेष परिस्थितियों में एक्स पोस्ट फैक्टो शोध का उपयोग मनोवैज्ञानिक शैक्षिक एवं समाजशास्त्रीय शोध में आज भी होता है। पैराग्राफ चेंज पुरालेख शोध आर्काइवल रिसर्च पुरालेख शोध जैसे शोध को कहा जाता है जिसमें लिखित रिकॉर्ड रिटन रिकॉर्ड के आधार पर एक या एक से अधिक चरों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इस तरह के रिकॉर्ड मूलतः स्कूल अस्पताल पुलिस सरकारी दस्तावेज पुस्तकालय आदि से प्राप्त किए जाते हैं। रिकॉर्ड का अध्ययन कर शोधकर्ता अपने अभिरुचि के चर वेरिएबल से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करता है, फिर उनका विश्लेषण करके वह किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है। सचमुच में यदि हम इस तरह के शोध के स्वरूप पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होगा कि यह एक तरह का एक्स पोस्ट फैक्टो शोध एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, जिसमें पहले घटी घटनाओं का अध्ययन संचित रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। पैराग्राफ चेंज प्रलेख शोध के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे फास्ट मैन एवं वाइट फास्ट मैन एंड वाइट ने 1889 ने युद्ध सैनिकों के मेडिकल एवं मनोचिकित्सीय रिकॉर्ड का निरीक्षण उत्तराघातीय तनाव विकृत पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का वर्णन करने के लिए किया। लिनार्स 1991 ने आत्महत्या लेख सुसाइड नोट का विश्लेषण उनके उभयनिष्ठ सार कॉमन थीम को जानने के लिए किया। पुरालेख शोध का उपयोग सामाजिक प्रवाह सोशल ट्रेंड्स एवं घटनाओं इवेंट्स का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कोलर्स तथा अल्फा ने कुछ गीतों सॉन्ग्स में अल्कोहल संबंध सार का विश्लेषण किया और यह पाया कि अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति अपने गम या दुख को भुलाने के लिए करता है। पैराग्राफ चेंज। पुरालेख शोध के कुछ लाभ एडवांटेजेस हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, पुरालेख शोध द्वारा वैसे व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है जिसे अन्य तरीकों या विधियों से प्रेक्षण नहीं किया जा सकता है। दो, पुरालेख शोध से प्रयोज्यों के आत्म रिपोर्ट सेल्फ रिपोर्ट्स की जांच भी संभव हो पाता है। दूसरे शब्दों में, पुरालेख शोध में चूंकि आंकड़ों का स्रोत मौलिक रिकॉर्ड होता है, अतः प्रयोज्यों द्वारा बतलाए गए कथनों की जांच मौलिक रिकॉर्ड से तुलना करके आसानी से ही हो जाता है। पुरालेख शोध के कुछ अलावा डिसएडवांटेजेस भी हैं जो इस प्रकार हैं। एक, अक्सर देखा गया है कि शोधकर्ता सभी वांछित मौलिक रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि जो लोग उस रिकॉर्ड को रखने वाले अधिकारी होते हैं वे शोधकर्ता से उसे निरीक्षण करने की अनुमति नहीं देते हैं। पैराग्राफ चेंज। दो, शोधकर्ता को उन व्यक्तियों के प्रति अनावश्यक आभार जताना होता है जिनके रिकॉर्ड का प्रेक्षण किया जा रहा है क्योंकि ऐसे निरीक्षण से उन्हें कुछ व्यक्तिगत तकलीफ हो सकती है। तीन, पुरालेख शोध का तीसरा अलाव यह है कि आंकड़ों की यथार्थता एक्यूरेसी तथा उपयुक्तता अप्रोप्रिएटनेस पूर्णतः उन लोगों पर निर्भर करता है जिन्होंने रिकॉर्ड को तैयार किया है। प्रायः रिकॉर्ड किसी शोध या शोधकर्ता को ध्यान में रखकर नहीं तैयार किया जाता है, फलतः शोध के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर उसमें नहीं भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड में कुछ ऐसे खुले प्रश्न ओपन क्वेश्चंस तथा शब्द बहुल वर्बोस हो सकते हैं जिनकी व्याख्या शोधकर्ताओं को अपने ढंग से करना आवश्यक हो जाता है। इन कारणों से पुरालेख शोध की विश्वसनीयता कम हो जाती है और हम लोगों को पुरालेख आंकड़ों आर्काइवल डेटा में अपने प्रत्यक्ष प्रेक्षण से प्राप्त आंकड़ों की अपेक्षा कम विश्वास किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पुरालेख शोध यद्यपि अधिक लोकप्रिय नहीं है फिर भी अध्ययन की यह विधि कुछ विशेष तरह की समस्याओं के अध्ययन में अहम भूमिका निभाता है। केस अध्ययन, केस स्टडी। केस अध्ययन एक अन्य ऐसा महत्वपूर्ण अप्रयोगात्मक शोध है जिसमें किसी एक परिस्थिति, घटना, समूह, समुदाय या व्यक्ति का गहराई इन डेप्थ से विश्लेषण किया जाता है। प्रायः केस अध्ययन में केस एक व्यक्ति होता है परंतु केस अध्ययन एकाकी प्रयोग सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट से भिन्न होता है क्योंकि एकाकी प्रयोज्य एक तरह का प्रयोगात्मक शोध है जिसमें स्वतंत्र चर का जोड़ तोड़ संभव होता है। केस अध्ययन केस स्टडी, केस इतिहास, केस हिस्ट्री से भी भिन्न होता है। कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि केस अध्ययन में शोधकर्ता एक भावी पर्सपेक्टिव एवं अनुदैर्य लॉन्गिट्यूडनल दृष्टिकोण अपनाता है जबकि केस इतिहास में शोधकर्ता एक अनुदर्शी एवं पुरालेख आर्काइवल दृष्टिकोण अपनाता है। केस अध्ययन प्रायः नैदानिक शोधों क्लिनिकल रिसर्चेस में काफ़ी उपयोग किए जाते हैं जिसमें रोगी के बहुत सारे पहलुओं विशेषकर वैसे पहलुओं जो उसके वैज्ञानिक लक्ष्यों एवं चिकित्सा के दौरान दिए गए प्रतिक्रियाओं रिएक्टिव्स से संबंधित होते हैं का वर्णन किया जाता है। मार्टोरोनो 1991 एवं स्ट्राग्रे तथा ट्रियूट 1992 ने केस अध्ययन का उपयोग उपयुक्त उद्देश्यों में किया है। केस अध्ययन द्वारा सामान्य व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है जैसे निस्सर 1981 ने एक सरकारी गवाह में उत्पन्न स्मृति विचलनों मेमोरी डिस्टॉर्शंस का अध्ययन घटनाओं के रिकॉर्ड की तुलना गवाह के सबूतों के रिकॉर्ड से तुलना करके किया है। केस अध्ययन का केंद्र बिंदु कोई सामाजिक इकाई या कोई व्यवसाय संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जैसा कि हैरिस एम सुटॉन 1986 ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने अंतिम उत्सवों क्लोजिंग सेरेमनीज का उन संगठन के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है जो सरकार द्वारा विघटित डिस्पैंड कर दिया गया था। केस अध्ययन में आंकड़ों का संग्रहण कई विधियों से किया जाता है। इसमें से महत्वपूर्ण विधि निम्नांकित है। एक, केस या इकाई के सामाजिक गुणों विशेषताओं एवं व्यवहार के प्रेक्षण का शोधकर्ता द्वारा प्रेक्षण द्वारा। दो, प्रश्नावली मनोवृत्ति परीक्षण आविष्कारिका चेकलिस्ट तथा अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के उपयोग द्वारा। 3, अरुआट स्कूल, उपचार गृह, क्लिनिक्स, कोर्ट या अन्य स्रोत से अभिलेखित आंकड़ों का विश्लेषण द्वारा। 4, प्रयोज्यों, दोस्तों, संबंधियों एवं अन्य व्यक्तियों के साक्षात्कार द्वारा। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में केस अध्ययन के निम्नांकित विशेषताएं सामने उभर कर आती हैं। 1, केस अध्ययन एक ऐसा उपागम अप्रोच है जो सामाजिक इकाई सोशल यूनिट का एक संपूर्णता के दृष्टिकोण से देखता है। 2, यह जरूर कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक इकाई कोई एक एक व्यक्ति हो, बल्कि यह एक परिवार, सामाजिक समूह, समुदाय या सामाजिक संस्थान कुछ भी हो सकता है। 3, केस अध्ययन में सामाजिक इकाई का एकाकी चरित्र यूनिटरी कैरेक्टर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सामाजिक इकाई सोशल यूनिट चाहे वह जो भी हो, संपूर्ण रूप से उसका अध्ययन किया जाता है। 4, केस अध्ययन में शोधकर्ता सामाजिक इकाई का क्या, व्हाट तथा क्यों, वाई पहलुओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यहाँ शोधकर्ता सामाजिक इकाई का जटिल व्यवहारपरक पैटर्न की व्याख्या ही नहीं करता है, बल्कि उन कारकों को ही चिन्हित करने की कोशिश करता है जिनसे ऐसे जटिल व्यवहारात्मक पैटर्न की उत्पत्ति हुई है। 5, चूंकि केस अध्ययन एक विवरणात्मक शोध डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, अतः यहाँ चरों में जोड़ तोड़ नहीं किया जाता है। 6, केस अध्ययन में शोधकर्ता प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, मनोवृत्ति परीक्षण एवं अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से आंकड़ा इकट्ठा करता है। इसके अतिरिक्त इसमें अभिलेखित आंकड़े, रिकॉर्डेड डेटा जो अखबार, कोर्ट, सरकार तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं का भी विश्लेषण किया जाता है। केस अध्ययन के कुछ लाभ, एडवांटेजेस तथा अलाभ, डिसएडवांटेजेस हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। 1, केस अध्ययन का मुख्य लाभ यह है कि यह किसी व्यक्ति, घटना या समूह का गहराई से अध्ययन प्रस्तुत करता है, न कि केवल उसका वर्णन मात्र करता है। 2, गुडे एवं हट 1981 के अनुसार, चूंकि केस अध्ययन में इकाई का अध्ययन गहराई से होता है, इसलिए इसके आधार पर एक ऐसा पर्याप्त आधारभूत तथ्य मिलता है जिसके आधार पर इकाई के बारे में एक पर्याप्त प्राकल्पना विकसित किया जा सके। 3, केस अध्ययन में दो समान सामाजिक इकाई सोशल यूनिट्स के बीच तुलना करने के लिए पर्याप्त तथ्य प्रदान करता है। 4, गुडे तथा हार्ट 1981 का मत है कि केस अध्ययन से उन सभी संगत तथ्यों एवं आंकड़ों को सावधानीपूर्वक परख करने का अवसर मिलता है जिसके आधार पर प्रश्नावली या कोई परीक्षण को विकसित किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज, इन लाभों के बावजूद इसके कुछ अलग डिसएडवांटेजेस हैं जो इस प्रकार हैं। 1, केस अध्ययन ऊपर से देखने में सरल अवश्य दिखता है, परंतु सच्चाई यह है कि इसे सफलीभूत होने के लिए यह आवश्यक है कि शोधकर्ता संबंध क्षेत्र में निपुण हो तथा महत्वपूर्ण पदों को महत्वहीन पदों से अलग करने में सक्षम हो। 2, समय एवं धन के ख्याल से केस अध्ययन एक अनुपयुक्त विधि है। इस तरह के अध्ययन में प्रत्येक केस का विश्लेषण चूंकि स्वतंत्र रूप से होता है, अतः इससे न केवल समय बल्कि धन का भी व्यय पर्याप्त होता है। 3, केस अध्ययन में शोधकर्ता का पूर्वाग्रह बायस से वस्तुनिष्ठ आंकड़ा संग्रहण, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन में बाधा पहुंचता है। परिणामतः इसके निष्कर्ष की विश्वसनीयता तथा वैधता पर शक किया जाता है। 4, केस अध्ययन में पोस्ट हॉक फैलेसी होने की संभावना पर्याप्त होती है, जिसमें प्रभाव इफेक्ट्स को गलत ढंग से कुछ ऐसे कारकों के रूप में आरोपित किया जाता है तो साधारण ढंग से उससे सहचर्चित होते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि केस अध्ययन में कारण प्रभाव संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित नहीं हो पाता है। 5, केस अध्ययन में केस या प्रयोज्य का चयन सुविधाजनक ढंग से ना कि यादृच्छिक ढंग से किया जाता है, अतः ऐसे ढंग अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण संदेहपूर्ण होता है क्योंकि एक केस से अन्य केसों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो पाता है। 6, एक अनुदैर्ध्य अध्ययन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के रूप में केस अध्ययन में बहुत सारे कारकों के मिल जाने से अस्तव्यस्तता या गड़बड़ी कन्फाउंडिंग उत्पन्न हो जाती है तथा एक पुरालेख अध्ययन आर्काइवल स्टडी के रूप में केस अध्ययन का कुछ ऐसे आंकड़े उत्पन्न करते हैं जिनकी वैधता तथा विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पैराग्राफ चेंज। इन अलाभों के बावजूद केस अध्ययन शोध का प्रयोग मनोवैज्ञानिक शोधों में, खासकर नैदानिक एवं सामाजिक शोधों में काफी होता है। प्रयोगात्मक शोध तथा एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मनोवैज्ञानिक शोध में प्रयोगात्मक शोध तथा एक्स पोस्ट फैक्टो शोध दो ऐसे शोध हैं जो तुलनात्मक रूप से अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। इन दोनों शोधों में समानता यह है कि शोधकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कुछ पूर्वानुमान लगाता है। फिर भी इन दोनों में स्पष्ट अंतर है जो निम्नांकित है। एक, प्रयोगात्मक शोध का स्वरूप जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट्स होता है, जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो शोध का स्वरूप अनुप्रयोगात्मक नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। इसका मतलब तब यह हुआ कि प्रयोगात्मक शोध एक्स पोस्ट फैक्टो शोध की तुलना में अधिक वैज्ञानिक होता है। दो, प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता को स्वतंत्र चर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है, जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में शोधकर्ता को स्वतंत्र चर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण होने से प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में सीधे जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन कर लेता है, जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में स्वतंत्र चर में इस तरह के जोड़ तोड़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि स्वतंत्र चर अध्ययन प्रारंभ होने के बहुत पहले ही घटित हो चुका होता है। पैराग्राफ चेंज। तीन, प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता प्रयोज्यों का विभिन्न समूहों में यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट कर पाता है, परंतु एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में इस तरह का यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट संभव नहीं है। चार, अब प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता आश्रित चर तथा स्वतंत्र चर के संबंध पर काफी विश्वास एवं दावे के साथ जो कहना चाहे वह कह सकता है, परंतु एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में वह इन दोनों चरों के संबंध के बारे में इस तरह का दावेदार कथन नहीं कर सकता है। स्पष्ट हुआ कि प्रयोगात्मक शोध एवं शोध तथा एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। अप्रयोगात्मक शोध की परिसीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मनोविज्ञान, शिक्षा तथा समाजशास्त्र के क्षेत्र में किए गए अप्रयोगात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर यदि हम ध्यानपूर्वक गौर करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह के शोध की कुछ परिसीमाएं भी हैं, जिनके कारण इस ढंग के शोध की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी तथा वैधता, वैलिडिटी अप्रयोगात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की इन परिसीमाओं लिमिटेशंस में निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ की अक्षमता, इनएबिलिटी टू मैनिपुलेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अप्रयोगात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि इसमें स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किया जाना संभव नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन शोध प्रारंभ होने से अक्सर काफ़ी पहले ही हो चुकी होती है। अतः जब शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करने में असमर्थ रहता है तो वह यह भी निश्चित नहीं कर पाता है कि आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाला परिवर्तन चेंजेस का निश्चित कारण क्या है। अंततः वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर विश्वास के साथ नहीं पहुंच पाता है। दो, यादृच्छिकरण करने की कमी, लैक ऑफ पावर टू रैंडमाइज। अप्रयोगात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यह तो संभव है कि व्यक्तियों का एक समूह जिसे प्रतिदर्श सैंपल कहा जाता है का चयन सिलेक्शन जीव संख्या पॉपुलेशन से किया जाए, परंतु यह संभव नहीं है कि उसका यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट किया जाए। अप्रयोगात्मक शोध का यह एक महत्वपूर्ण दोष है। यादृच्छिक आवंटन रैंडम असाइनमेंट संभव नहीं होने पर शोधकर्ता लाचार होकर ऐसे समूह का निर्माण करते हैं जो पहले से ही किसी ज्ञात विशेषता पर आवंटित होते हैं। इस तरह की प्रक्रिया को आत्मचयन सेल्फ सिलेक्शन कहा जाता है। जैसे धूम्रपान स्मोकिंग एवं फेफड़ा का कैंसर के अध्ययन वाले शोध में शोधकर्ता सभी धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों का यादृच्छिक ढंग से रैंडमली चयन कर सकता है। इसके बाद उन व्यक्तियों को वह समूह में यादृच्छिक आवंटन नहीं कर पाएगा बल्कि वह उसे दो समूहों में सुविधानुसार बांट देगा। पहले समूह में वैसे व्यक्तियों का चयन होगा जिन्हें फेफड़े का कैंसर हो गया है तथा दूसरे समूह में उन व्यक्तियों को वह रखेगा जिन्हें ऐसा कैंसर नहीं हुआ है। इसके बाद वह इन सभी व्यक्तियों की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड्स का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि फेफड़े के कैंसर का प्रसार इंसिडेंस प्रतिदिन धूम्रपान किए गए सिगरेट की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे जैसे सिगरेट पीने की संख्या बढ़ती है कैंसर का प्रसार इंसिडेंस भी बढ़ता है। परंतु शोधकर्ता का यह निष्कर्ष सही हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि प्रयोज्य सब्जेक्ट्स का समूहों में आवंटन असाइनमेंट यादृच्छिक ढंग से रैंडमली नहीं किया जा सकता है। संभवतः संभव है कि फेफड़े का कैंसर होने वाले समूह में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो जिन्हें कैंसर उनके अधिक चिंता एंजाइटी या तनाव के कारण हुआ हो, परंतु उन्हें उस समूह में सिर्फ इसलिए रख लिया गया था क्योंकि उन्हें धूम्रपान की आदत थी। पैराग्राफ चेंज 3 ए यथोचित व्याख्या की संभावना पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन अप्रयोगात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नियंत्रण की कमी लैक ऑफ कंट्रोल पाई जाती है जिनके कारण यथोचित व्याख्या इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस तरह के शोध में बहिरंग चरों एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पर शोधकर्ता न के बराबर नियंत्रण कर पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्राप्त आंकड़ों की जो व्याख्या की जाती है वह पूर्णतः यथोचित नहीं हो पाती है और गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इन परिसीमाओं लिमिटेशंस के बावजूद अप्रयोगात्मक शोध मनोविज्ञान शिक्षा तथा समाजशास्त्र के क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। इसका एक मूल कारण यह है कि कुछ ऐसी शोध समस्याएं हैं जिनका प्रयोगात्मक अध्ययन एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना एक टेढ़ी खीर है। अधिकतर ऐसी समस्याएं कुछ खासकर चरों जैसे बुद्धि अभिक्षमता एप्टीट्यूड घरेलू पृष्ठभूमि होम बैकग्राउंड उपलब्धि अचीवमेंट सामाजिक वर्ग सोशल क्लास दृढ़ता रिजिडिटी आदि चरों से संबंधित होती है। इन चरों की प्रकृति ऐसी है जिन्हें प्रयोगात्मक रूप से एक्सपेरिमेंटली जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन करना संभव नहीं है। इन चरों से संबंधित समस्याओं का एक क्रमबद्ध नियंत्रित कंट्रोल्ड अध्ययन तो संभव है परंतु उन पर प्रयोगात्मक शोध किया जाना संभव नहीं है।